আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ طور کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 49 آیتیں ہیں۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ طور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی مواقع پر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تاثیر سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، جن میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ طور کی قسم اور اس لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اور بیت معمور کی اور بلند چھت کی اور سلگائے جانے والے سمندر کی، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی۔ یہ 5 چیزیں، ایک طور، ایک لکھی ہوئی کتاب، ایک بیت معمور، ایک سقف مرفوع بلند چھت، اور ایک بحر مسجور سلگایا جانے والا سمندر۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ طور تو وہ عظمت والا پہاڑ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں تورات عطا فرمائی، تو طور وہ مقدس پہاڑ ہے۔ دوسری بات، کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب سے مراد یا تو تورات شریف ہے، یا اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یا اس سے مراد اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر ہیں جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ پہلا تورات والا معنی لیں تو یوں بنے گا کہ اس طور پہاڑ کی قسم جس پر خدا نے تورات عطا فرمائی، اور اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ بیت معمور کی قسم بھی بیان ہوئی۔ بیت معمور، بیت المعمور، یہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے وہ جگہ ہے جو فرشتوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے زمین کے اوپر ہمارے لیے خانہ کعبہ، جیسے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح اس کے عین اوپر، جس جگہ خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور یہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ ان کا قبلہ ہے، اور اس کی جو چھت ہے وہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بیت معمور کا مشاہدہ معراج کی رات کیا تھا، چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ جب سرکار علیہ السلام 7ویں آسمان پر گئے تو فرمایا کہ پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی، یہ بیت المعمور ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والا مقام، بڑی عظمت والی جگہ۔ چوتھی جو قسم بیان ہوئی وہ ہے سقف مرفوع، بلند چھت، इससे मुराद या तो आसमान है कि आसमान जमीन के लिए बमंजिला छत के है, और यह इससे मुराद अर्श है जो आसमानों के ऊपर जो जन्नत की छत है। अर्श मुराद है जो जन्नत की छत है। तो अब इस एतबार से माना हुआ कि आसमान की कसम जो जमीन के लिए छत की तरह है, या अर्श की कसम जो जन्नत की छत है। पांचवी बात है वल बहरिल मस्जूर, सुलगाए जाने वाले भड़काए जाने वाले समंदर की कसम। अल्लाह ताला कयामत में तमाम समंदरों को आग बना देगा, तो इनमें आग भड़क उठेगी और ये सब समंदर जो है वो आग बन जाएंगे, और इससे जहन्नम की आग में इजाफा किया जाएगा, तो ये उसकी कसम है। अब ये सारी कसमों के बाद क्या बयान किया जा रहा है कि तूर पहाड़ की कसम, लिखे हुए लिखी हुई किताब की कसम, और सक्फ़े मरफू की कसम, बैत मामूर की कसम, सुलगाए जाने वाले समंदर की कसम। अब फरमाया इन अज़ाब रब्बिक लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है, उसे कोई टालने वाला नहीं। यह है पांच चीजों की कसम के बाद, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है, इसे कोई टालने वाला नहीं। तो ये जो अल्लाह ताला ने आखिरत के बारे में बयान फरमाया कि कुफार के लिए अजाब है जो उनको मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई टालने वाला नहीं। ये जो आयात मुबारक है इसके बारे में हजरत जुबैर बिन मुतइम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदर की जंग के बाद मैं मदीना मुनव्वरा आया, और नबी पाक अलैहि सलात व सलाम से मैंने बदर के कैदियों के बारे में बातचीत करनी थी। जब मैं पहुंचा तो नबी पाक अलैहि सलात व सलाम नमाज मगरिब पढ़ा रहे थे, इमामत फरमा रहे थे, और आपकी जो आवाज़ थी वो मुझे मस्जिद के बाहर सुनाई दे रही थी। आप सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे। अब हजरत जुबैर फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर पहुंचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है, उसे कोई टालने वाला नहीं। तो फरमाते हैं कि इन आयात को सुनकर मेरा दिल ऐसे हो गया जैसे अभी मेरा दिल फट जाएगा, और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अभी यहां से हटने से पहले मुझ पर अजाब आ जाएगा। तो फरमाते हैं कि मैं अजाब नाजिल होने के खौफ से उसी वक्त ईमान ले आया। ये इस आयत मुबारका की तासीर थी। और इसी तरह एक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उनका बड़ा प्यारा वाकया है जिससे उनका खौफ खुदा भी पता चलता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने जब ये आयत तिलावत फरमाई, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है, तो आपका सांस फूल गया, और इसकी वजह से 20 दिन तक 20 डेज 20 दिन तक बार बार यही कैफियत बनती रही। यानी जब वो आयत याद आती तो सांस फूल जाता, जैसे घबराहट में, खौफ में, दहशत के अंदर इंसान का सांस फूल जाता है। हजरत मेरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ये आयत याद करते और आपका सांस फूल जाता। ये बुजुर्गान दीन का, सलफ सालहीन का, सहाबा इकराम का, और खुसूसन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाल था। खौफ खुदा, कुरान की तासीर, अल्लाह ताला की अजमत का एहसास, आखिरत का डर उनके दिल में ऐसा हुआ करता था। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अजाब किस दिन वाक़े होगा। फरमाया यौम तमूरु समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा फवैलुन यौम इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन الذين هم في خوض يلعبون, जिस दिन आसमान सख्ती से हिलेगा और पहाड़ तेजी से चलेंगे तो उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है, वो जो शुगल में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन आसमान सख्ती से हिलेगा, जैसे कश्ती डोलती है कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हवा तेज चलती है, तूफान आता है, तो जैसे कश्ती को करार नहीं होता, दाएं बाएं जो है वो झोल रही होती है, आसमान भी इसी तरह कभी इधर कभी इधर, और बिल आखिर फट जाएगा। जब क्यामत आएगी तो आसमान जो है वो यूं हिलते 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 फट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और पहाड़, फरमाए व तसीरुल जिबालु सैरा, और पहाड़ उड़ते फिरेंगे, चलेंगे, ऐसे चलेंगे जिस तरह हवा के अंदर हमें बादल चलते हुए नजर आते हैं, इस तरह पहाड़ भी उड़ते हुए नजर आएंगे और वो भी रेजा रेजा हो जाएंगे। फरमाया उस दिन, वो जो क्यामत का दिन है, उस दिन बर्बादी है झुटलाने वालों के लिए जो शुगल में पड़े खेल रहे हैं, जो अपनी मौज मस्तियों में हैं, शुगल में हैं, मशगले हैं, मजे हैं, उसी में पड़े हुए, खुदा से गाफिल, खुदा के अहकाम से गाफिल, आखिरत से गाफिल, तो वो अपने उनके लिए बर्बादी है। अब अल्लाह ताला फरमाता है, यौमा युदाउना इला नार जहन्नम दाअ हाज़िहि नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून अफसिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून इस्लौहा फसबिरु औ ला तसबिरु सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून। जिस दिन उन्हें जहन्नम की तरफ सख्ती से धकेला जाएगा, ये वो आग है, कहा जाएगा ये वो आग है जिसे तुम झुटलाते थे, तो क्या ये जादू है या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें दाखिल हो जाओ, तो अब चाहे सब्र करो या ना करो, सब तुम पे बराबर है, तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते थे। ये है कुफार का अंजाम, खुदा के मुनकिरों का, खुदा के रसूलों के मुनकिरों का, इस्लाम के मुनकिरों का, ये अंजाम जहन्नम की तरफ सख्ती से धकेला जाएगा। और कहा जाएगा कि ये जो आग अब तुम्हें नजर आ रही है, ये वो आग है, ये वो जहन्नम है जिसको तुम झुटलाते थे, दुनिया में जिसका इनकार करते थे, कहते थे कि मर गए तो खत्म, कोई दोबारा नहीं उठना, ये वो आग है जिसको तुम जुटलाते थे। तो अब जरा बताओ ये जादू है या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, दुनिया में तो तुम बोलते थे कि भाई ये जो आखिरत की बातें की जा रही हैं, ये तो ऐसे ही फजूल पुरानी कहानियां हैं, ये तो जादू की बातें हैं, ये तो ऐसी हैं, ये तो वैसी हैं, तो ये वो है अब तुम्हारी आंखों के सामने है, तो अब जरा बताओ कि अब ये तुम्हें जादू नजर आ रहा है या कुछ और नजर आ रहा है। तो कहा जाएगा कि अब इसमें दाखिल हो जाओ और अब सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है, तुम सब्र करोगे तब भी अजाब होगा, नहीं करोगे तब भी अजाब होगा, खामोश रहोगे तब भी अजाब होगा, चीखो चिल्लाओगे तब भी अजाब होगा, अब तुम्हारे लिए बराबर है। और ये है क्यों, ये ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ किया नहीं और तुम्हें सजा मिल रही है, ये जो तुमने दुनिया में किया था ये उसी का बदला है, जो दुनिया में इनकार किया था, खुदा से सरकशी, खुदा के मुकाबले में सरकशी और तकब्बुर और इनाद इख्तियार किया था, ये उसी का नतीजा है। ये अल्लाह ताला ने कुफार का और जहन्नमियों का अंजाम बयान किया। और कुरान पाक का उसलूब है कि अल्लाह ताला जहां पर अपने नाफरमानों का बुरा अंजाम बयान फरमाता है, वहीं पर अपने फरमा बरदारों का अच्छा अंजाम भी बयान फरमाता है, ताकि बदों का और बुरों का अंजाम देख के हम डरें और अच्छों का सिला और इनाम देखकर हमारे दिल में रग़बत पैदा हो, हम अच्छा बनने की कोशिश करें और बुरे बनने से बचें, जो चीज़ जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है उससे बचें, जो जन्नत ले जाने वाली है वो करें। अब जन्नतियों का इनाम और सिला और अंजाम क्या होगा वो बयान होता है, इरशाद होता है, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नतिन व नईम فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين। बेशक परहेजगार लोग बागों और नेमतों में होंगे, अपने रब की अताओं पर खुश हो रहे होंगे और उन्हें उनके रब ने आग के अजाब से बचा लिया, अपने आमाल के बदले में खुशगवार नेमतें खाओ और पियो, ये उनसे कहा जाएगा। वो जन्नती कितार दर कितार बिछे हुए तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे, और हमने बड़ी आंखों वाली हूरों से उनका निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें बयान फरमाई कि मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग। यहां पर पहले भी मैंने एक आयत के तहत ये बात अर्ज की थी कि कुफार के मुकाबले में मोमिन होते हैं, मुशरिक के मुकाबले में मुवहिद है, काफिर के मुकाबले में मोमिन है, मुस्लिम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो इरशाद फरमाता है, कुफार का अंजाम बयान होता है और उसके बाद जब ईमान वालों का अंजाम बयान किया जाता है तो अल्लाह ताला अक्सर व बेशतर जगह पर किसी वस्फ को बयान फरमाता है, इन्नल अबरारा, बेशक नेक लोग, नेकियां करने वाले लोग, या फरमाता है इन्नल मुत्तकीना, बेशक तकवे वाले लोग। और बहुत सारी जगहों पर जहां जन्नतियों का बयान है वहां पर मुत्तकीन का बयान। तो इसमें इशारा होता है इस बात की तरफ कि ईमान बजाते खुद तकवे की एक सूरत है, तकवे की एक किस्म है, बड़ी आला किस्म है। लेकिन इसके साथ मोमिन को मुत्तकी के लफ्ज से ताबीर करने के अंदर इशारा इस बात की तरफ है कि मोमिन मुत्तकी होना चाहिए, मोमिन में तकवा नजर आना चाहिए, उसकी जात से जो अफाल सादिर हों वो तकवे के नूर के साथ मिले हुए हों। तो फरमाया बेशक मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, तकवे वाले लोग, गुनाहों से बचने वाले लोग, ये बागों में होंगे और चैन में होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फंदोज हो रहे होंगे। इनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत ये कि अल्लाह ताला ने इनको अजाब जहीम से बचा लिया, आग के अजाब से बचा लिया। और इन्हें कहा जाएगा खाओ पियो बदला उसका जो तुम दुनिया में अमल करते थे, जो नमाजें पढ़ते थे, जो तुम नेक काम करते थे, जो तुम गरीबों की मदद करते थे, माँ बाप की खिदमत करते थे, बीवी बच्चों के हुकूक पूरे करते थे, औलाद की अच्छी नेक दीनी तरबियत करते थे, जो तुम नेकी की दावत देते थे, दूसरे लोगों को खुदा की तरफ बुलाते थे, गुनाहों से बचते थे, दूसरों को बचाते थे, जो तुम कुरान पढ़ते थे, तिलावत करते थे, जिक्र करते थे, दुरूद पढ़ते थे, अल्लाह के प्यारों को याद करते थे, बदला इन आमाल का, खाओ पियो और मजे से खाओ पियो। तो इन पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम। और फिर जन्नती वो एक तरतीब से बिछे हुए, एक कितार दर कितार बिछे हुए तख्तों के ऊपर तकिया लगा के बैठे होंगे। जैसे एक आदमी बड़े मजे में, बड़े इंजॉयमेंट के अंदर बैठा होता है और बिल्कुल बेफिक्र और टेंशन फ्री होकर बैठता है, फरमाया इस अंदाज के अंदर वो बैठे होंगे और हमने बड़ी आंखों वाली हूरों से उनका निकाह कर दिया। खूबसूरत और हसीन और जमील औरतों से अल्लाह तबारक व ताला, हूरों से अल्लाह तबारक व ताला उनका निकाह फरमाएगा। ये अल्लाह तबारक व ताला हमारी तरगीब के लिए और हमें जन्नत की तरफ रागिब करने के लिए इरशाद फरमाता है। अब उसके बाद मजीद जन्नतियों पर जो इनाम होगा उसका बयान है। فرمائے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ईमान के साथ उनकी पैरवी की तो हमने उनकी औलाद को उनके साथ मिला दिया और उन वालिदैन के अमल में कुछ कमी न की। हर आदमी अपने आमाल में गिरवी है। क्या फरमाया गया यहां पर? जन्नत में चूंकि जन्नती के दिल को खुश किया जाएगा, तो अब मिसाल के तौर पे मां बाप बड़े नेक थे और वो जन्नत के ऊपर वाले दर्जे में, और उनकी औलाद अपने आमाल ही की वजह से जन्नत के बहुत नीचे दर्जे में होगी। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि अगर चे औलाद ने नेक आमाल नहीं भी किए तब भी अल्लाह तबारक व ताला इन्हें इनके मां बाप के साथ मिला देगा। यानी इन्हें उसी दर्जे में पहुंचा देगा जो इनके मां बाप का दर्जा होगा। क्यों? उन मां बाप को खुश करने के लिए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल होगा, खास रहमत होगी, मां बाप को नीचे नहीं लाया जाएगा, औलाद के दर्जे बढ़ा के अल्लाह ताला ऊपर कर देगा। मां बाप की नेकियों में और उनके सिले में और अजर में कोई कमी नहीं आएगी, हाँ औलाद का मर्तबा बढ़ा दिया जाएगा। तो इसे पता चला कि नेक मां बाप की भी फजीलत है कि जिसके मां बाप नेक हैं तो उसका फैजान और उसका फायदा भी औलाद को मिलेगा। अब मजीद फरमाया वह अमदनहुम बिफाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून, और फलों मेवों और गोश्त जो वो चाहेंगे उनके साथ हमने उनकी मदद की। यानी जन्नत के अंदर जो फल मेवा गोश्त जो चाहेंगे अल्लाह तबारक व ताला उनको वो भी अता फरमाएगा। और मजीद फरमाया यतनाज़ऊन फीहा कअसल्ला लगुन फीहा वला तअसीम, जन्नती लोग जन्नत में ऐसे जाम एक दूसरे से लेंगे जिसमें ना कोई बेहूदगी होगी और ना गुनाह की बात। यानी जन्नत में जो कि अल्लाह तबारक व ताला जन्नती शराब भी अता फरमाएगा। तो दुनिया की शराब का मामला तो ये होता है कि जिसने शराब पी उसका दिमाग खराब, वो अपने हवा से बाहर, वो ऊल फूल बकना शुरू कर देता है, वो गालियां देना शुरू कर देता है, वो लड़ना शुरू कर देता है, वो सर फाड़ना शुरू कर देता है, वही बोतल घुमा के दूसरे के सर पे मार दी। तो दुनिया के अंदर शराब जब कोई ज्यादा पीता है तो उसका अंजाम ये होता है कि गाली देता है, फजूल बोलता है और बहुत सारे गुनाह में पड़ता है, बदकारी में पड़ता है, दीगर बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जन्नत में जो अल्लाह तबारक व तआला शराब अता फरमाएगा वो अक्ल को जायल नहीं करेगी, उसके पीने के बाद बेहूदगी नहीं होगी और उसके पीने से किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं होगा और ना उसके पीने में गुनाह का इर्तिकाब होगा। फरमाया कि जन्नती एक दूसरे से जाम लेंगे, दुनिया के अंदर भी शराबी जब शराब पीते हैं तो एक दूसरे से जाम शेयर करते हैं, लेकिन वो उसमें जो बेहूदगी होती है और जो उसका अंजाम होता है वो जब बहुत ज्यादा पी लेते हैं तो पूरी दुनिया को पता है कि फिर क्या होता है। वरना अभी भी मगरबी ममालिक में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाके देख लें कि सैटरडे नाइट को क्या होता है, जो वीकेंड होते हैं उन पे क्या होता है, वीकेंड में शराब पी के किस तरह लोग मदहोश फिरते हैं और क्या क्या करते हैं। लेकिन जन्नत के अंदर ये नहीं होगा, जन्नत में बेहूदगी नहीं, जन्नत में गुनाह नहीं, जन्नत में जुल्म नहीं, जन्नत में लड़ाई नहीं, जन्नत में तलख कलामी नहीं, वहां पर खुशी है, राहत है, मुसर्रत है, वहां पर तफक्को है, वहां पर हर तरह की नेमतें हैं। अब मजीद इरशाद फरमाया वयतूफु अलैहिम गिलमानुल लहुम कअन्नहुम लुलुम मकनून, और उनके खिदमतगार लड़के उनके गिर्द फिरेंगे गोया वो छुपा कर रखे हुए मोती हैं। ये जन्नतियों के खादिमीन का बयान है कि जन्नतियों की खिदमत करने के लिए नौजवान लड़के मुतय्यन होंगे और वो उनके खादिमीन इस कदर वजी होंगे कि गोया छुपे हुए मोती हैं। जैसे मोती चमकदार रोशन और खूबसूरत होता है, अल्लाह तबारक व ताला उनकी खिदमत के ऊपर भी ऐसों को मुकर्रर फरमाएगा। अब इरशाद फरमाया वा अक्बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफिकीन फमन्नल्लाहु अलैना ववक़ाना अज़ाबस समूम इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदउहु इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। और आपस में जन्नती आपस में सवाल करते हुए एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होंगे, कहेंगे बेशक हम इससे पहले अपने घरों में डरने वाले थे, तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें सख्त गर्म हवा के अजाब से बचा लिया। बेशक हम इससे पहले दुनिया में अल्लाह की इबादत करते थे, बेशक वही एहसान फरमाने वाला मेहरबान है। ये जन्नतियों की आपस में गुफ्तगू होगी, यानी जन्नती आपस में एक दूसरे से पूछेंगे कि भाई दुनिया में किस हाल में थे, क्या अमल करते थे। एक दूसरे से पूछेंगे यार आप बताओ ना आप दुनिया में क्या किया करते थे कि माशाल्लाह जन्नत के अंदर हो। दूसरा उससे पूछेगा यार आप भी बताओ ना आप क्या करते थे, माशाल्लाह आप जन्नत में हो, जन्नत में कैसे पहुंचे, क्या अमल किया आपने। अब जिसका जो अमल होगा, किसी ने जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उनके साथ साथ कुरान की तिलावत बहुत ज़्यादा की होगी, किसी ने अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा किया होगा, किसी ने दुरूद पाक सारी ज़िंदगी पढ़ा होगा, किसी ने गरीबों की मदद की होगी, किसी ने माँ बाप के साथ ज़्यादा हुस्ने सुलूक किया होगा, किसी ने अल्लाह के दीन को बुलंद किया होगा, किसी ने नेकी की दावत ज़्यादा दी होगी, किसी ने कोई नेकी की होगी। तो दुनिया में जिसने जो अमल किया होगा वो एक दूसरे को बताएगा कि भाई मैं तो ये किया करता था। और कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें से यहाँ पर बयान फरमाए कि वो कहेंगे कि भाई हम दुनिया में अपने घरों में डरे हुए रहते थे, हम खुदा के अजाब से डरते थे, खुदा के अजाब से हम डरते थे, हमें गुनाह करते हुए डर लगता था, हमारे सामने भी टीवी होता था, हमारे सामने भी फिल्में ड्रामे होती थी, हमारे सामने भी गुनाह के मवाके होते थे लेकिन हम खुदा से डरते थे, हम भी बीवी पे जुल्म कर सकते थे लेकिन खुदा से डरते थे, हम भी पड़ोसी को तंग कर सकते थे लेकिन हम खुदा से डरते थे। तो जो अल्लाह ताला से डर उनके दिल में था दुनिया में, वो उसका इजहार करेंगे कि हम दुनिया में अल्लाह के अजाब से डरते थे तो अल्लाह ताला ने हम पर एहसान फरमाया और जहन्नम की गर्म सख्त गर्म हवा से हमें महफूज फरमा लिया और हम दुनिया में अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो ये जो खुदा का डर है दुनिया में, अल्लाह का, अल्लाह से डरना है। कारोबार करें तो खुदा से डरें, हराम ना कमाएं, धोखा ना दें, झूठ ना बोलें, झूठी कसम ना खाएं, फ्रॉड ना करें, मिलावट ना करें, अगर कोई अफसर लगे तो रिश्वत ना लें, किसी जगह हराम मिलता है तो ना लें, किसी का गिरा पड़ा माल मिलता है तो उठा के खा ना जाएं, बल्कि अल्लाह ताला से डरें। बदकारी का, गुनाह का मौका मिलता है, खुदा से डरें। तो ये दुनिया में डरते रहेंगे अपने घरों के अंदर भी, जहां पर कोई दूसरा बाहर से देखने वाला नहीं होता लेकिन अपने घर में भी वो खुदा से डरते हैं तो अल्लाह ताला उन पे फजल फरमाएगा, एहसान फरमाएगा, जहन्नम की गर्म हवा से उनको महफूज फरमाएगा। और ये जहन्नम की जो गर्म हवा है ये कैसी है, अलमान वल हफीज हदीस मुबारक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि अगर अल्लाह ताला दुनिया वालों पर एक पोरे के बराबर, यानी ये जो उंगली का पोरा होता है, फरमाया कि अगर इतनी सी मिकदार में गर्म हवा के अजाब को खोल दे तो जमीन और उस पर मौजूद तमाम चीजें जल जाएंगी, तो इस कदर गर्म हवा है। इसी तरह एक और रिवायत भी है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा ये आयत फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम, ये जो अभी मैंने पढ़ी है, इसकी तिलावत फरमाई तो खौफ की वजह से ये दुआ मांगी, ए अल्लाह हम पर एहसान फरमा और हमें गर्म हवा के अजाब से बचा ले, बेशक तू एहसान फरमाने वाला मेहरबान है। इसी तरह और भी सहाबाए किराम और भी बुजुर्गाने दीन से मरवी है कि वो इस तरह की आयत पढ़ते तो अल्लाह ताला के अज़ाब से पनाह मांगते। और ये सुन्नत भी है, यानी सुन्नत है कि कुरान पाक जब पढ़े तो जहां अल्लाह ताला की रहमत की और जन्नत की आयतें आएं तो वहां अल्लाह ताला की रहमत की दुआ करें, जन्नत का सवाल करें, जहां जहन्नम का तस्कीरा आए, खुदा के गजब का तस्कीरा आए तो उससे अल्लाह ताला की पनाह मांगे और तअव्वुज करें। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके मुबारका से भी साबित है। अब इसके बाद इरशाद होता है फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून, तो ए हबीब तुम नसीहत फरमाओ, तुम अपने रब के फजल से ना काहिन हो और ना ही मजनून। ये जो आयत मुबारका है ये इस सियाक व सबात में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कुफार को दावत देते, कुरान सुनाते, तो वो कभी तो कहते लोगों को नबी पाक अलैहि सलाम से दूर रखने के लिए, कभी तो कहते कि भाई इनके पास ना जाओ, ये काहिन है। काहिन कौन होता है? जो अपने अकली क्यास से और कुछ जिन्नों की मुआवनत से जो मुस्तकबिल की गैब की खबरें देते थे। तो काहिन वो शख्स होता था कि जो गैब की खबरें दिया करता था लेकिन होती झूठी थी, अक्सर बेशतर झूठी होती थी, कुछ 100 में से एक आध छोटी मोटी बात सीधी भी निकल आती थी, इस पर उनका कारोबार चमकता था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी और सच्ची गैब की खबरें अता फरमाते थे, क्यामत के बारे में बताते थे, क्यामत आएगी, ये होगा, ये होगा, ये सब गैब की खबरें थी। तो अब वो कुफार लोगों को नबी पाक अलैहिस्सलाम से दूर रखने के लिए बोलते, भाई काहिन है ये कोई नबी नहीं है, ये तो गैब की ऐसी माजअल्लाह झूठी खबरें देते हैं। कभी बोलते माजअल्लाह कि ये तो मजनून है, यानी ये तो दीवाने हैं, इनका तो जो है वो बुतों के खिलाफ बोलते ना तो इनका तो दिमाग ठीक नहीं है, माजअल्लाह, ये उन काफिरों के अल्फाज थे। अल्लाह तबारक व तआला ने, अब ये बातें लाजमी बात है कि अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं जो अल्लाह की रजा की खातिर लोगों के भले और उनकी बेहतरी के लिए और उनको आजाब से बचाने के लिए उनको दिन रात दावत दे रहे हैं, और बजाय इसके के सामने वाले एहसान माने वो उल्टे इल्जाम लगा रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर रंजीदा खातिर होते, आपको दुख होता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहि सलातो वसलाम की तसल्ली के लिए इरशाद फरमाया कि ए हबीब तुम नसीहत करो, तुम अपने रब के फजल से ना काहिन हो ना मजनून हो, तुम नसीहत करते रहो। ये लोग बोलते हैं, फरमाया कि इनके कहने का क्या, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम अपने रब के फजल से, यानी तुम्हारे ऊपर रब का फजल है, तो अपने रब के फजल से ना काहिन हो ना मजनून हो। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई थी और आपकी हिम्मत को बढ़ाना था। और इसमें मुबल्लिगीन के लिए भी दर्स है कि जो लोग नेकी की दावत देते हैं, इस्लाम का पैगाम फैलाते हैं, उनको बहुत सारी आजमाइशों का, मुशक्क़तों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है बाद औकात, तो वो किसी इस तरह की रेजिस्टेंस से, मुजाहमत से वो हिम्मत ना तोड़े, हौसला ना हारे, हिम्मत ना हारे, बल्कि वो अल्लाह ताला की रजा की खातिर अपने काम में लगे रहें। लोग उन पर इल्ज़ाम भी लगाएंगे, कोई उनको उनको कहेगा कि यार ये तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, जैसे आजकल बोल देते हैं यार मौलवी तो हलवे के लिए करते हैं। तो ये जो ये है ना कि मौलवी हलवे के लिए करते हैं, ये दीनदारों पर और खुदा का दीन फैलाने वालों पर इल्ज़ाम लगाना ये काफिरों का पुराना तरीका है। काफिर हमेशा से ही ये इल्ज़ाम जो उनको सूझता था उस तरह का लगा देते थे। इन हादल शय युआत, ये तो कुफार ने कहा था नबी पाक अलैहिस्सलाम से कि ये जो बातें करते हैं ना, ये दीन की तौहीद की, इनका कोई मकसद है, इनकी गरज है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भी कुफार ने इतराज लगाए और माद अल्लाह मफाद परस्ती की बातें की जो सरासर बातिल और झूठ थी, तो फिर आजकल हम जैसे मुबल्लिगीन इनकी क्या औकात है। अगर इन पे इल्ज़ाम लगे और वो कुफार के तरीके पर अमल करने वाले लोग बोले कि मौलवियों का मसला हलवा है और मौलवियों का मसला पैसा है और ये तो इसके लिए सारा कुछ करते हैं, तो ये कुफार के पैरोकारों को बोलने दें, ये तो अपना बकते रहेंगे। लेकिन जो नबी की सुन्नत पे अमल करने वाला, वो अपनी सुन्नत क्यों छोड़े, वो अपना तरीका क्यों छोड़े। कुफार के तरीके पे चलने वाला तो अपना वो तरीका नहीं छोड़ रहा, तो नबी के तरीके पे चलने वाला जो है वो अपना अमल क्यों छोड़े। लिहाजा हिम्मत रख के अपने काम को करते रहना चाहिए। अब इसके बाद मजीद इरशाद होता है, अम यकूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून कुल तरब्बसु फइन्नी मअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। बल्कि काफिर कहते हैं, ये शायर हैं, हम इन पर गर्दश जमाना का इंतजार कर रहे हैं, तुम फरमाओ तुम इंतजार करते रहो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूं। ये कुफार का अगला जुमला कि ये शायर है, पहले कहा काहिन है, साथ में कहा यानी मजनून है, फिर कहा शायर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये इनकी चंद एक बातें थी, जैसे एक तो ये है कि कुफारे मक्का कहते थे कि भाई ये शायर है और हम इन पर गर्दशे जमाना का इंतजार कर रहे हैं, जैसे पहले शायर मर गए तो माद अल्लाह ये भी ऐसे ही दुनिया से गुजर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा सारा किस्सा, तमाम हो जाएगा। कुछ कुफार ये कहते थे कि जिस तरह मोहम्मद के वालिद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद, तो कुफार कहते थे जैसे वो जवानी में ही दुनिया से चले गए, इसी तरह ये भी जवानी में ही दुनिया से चले जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद बिल्कुल जवानी की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले गए थे, तो कुफार कहते थे कि ये भी ठीक है, कुछ अरसा और है, ये भी दुनिया से यूं ही चले जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि ए हबीब तुम इनसे कहो कि ठीक है फिर करते रहो इंतजार, गर्दशे जमाना का इंतजार करते हो, मेरे दुनिया से चले जाने का इंतजार करते हो, तो तुम ही इंतजार करते हो, मैं भी इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि पहले अल्लाह ताला किसको दुनिया से लेके जाता है और हक को बातिल कैसे जाहिर होता है और पहले किसको मौत आती है। तो वही हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी फतह नुसरत से नवाजा, ताईद अता फरमाई, बदर के मैदान में वही कुफार जो मुकाबले में थे वो मिलिया मेट हुए, कत्ल हुए, गिरफ्तार हुए, मरे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के फजल व करम से फाते हुए, आपको नुसरत मिली, आपको ताईद मिली, आपको गलबा हासिल हुआ। अब इसके बाद मजीद इरशाद होता है, अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहादा अम हुम कौमुन तागून, क्या उनकी अकलें उन्हें यही हुक्म देती हैं, बल्कि वो सरकश लोग हैं, क्या उनकी अकलें उन्हें यही हुक्म देती हैं बल्कि वो सरकश लोग हैं। यहां क्या बात की गई, यहां असल में कुफार की जो अपनी बातें हैं उनके तजाद को बयान किया गया, क्योंकि कुफार ने यहां पर कितने अल्फाज इस्तेमाल किए, एक कहा कि ये काहिन है, दूसरी बात कही ये मजनून है, तीसरी बात कही ये जादूगर है, और चौथी बात कही कि ये शायर है। अब एक सिंपल सी बात है कि जो मजनून है जिसकी अकल काम नहीं करती, क्या वो शायर हो सकता है? मजनून आदमी तो शायर नहीं होता, शायरी के लिए तो जबान पे उबूर, फसाहत और बलागत, अल्फाज की तरतीब, मौजू अल्फाज, और उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो एक महारत चाहिए होती, तो मजनून में तो कोई महारत नहीं होती। तो अब एक तरफ तुम कहते हो कि ये मजनून है, दूसरी तरफ कहते हो शायर है, तो तुम्हारी तो अपनी बात के अंदर तजाद है, एक बात। दूसरी बात, तुम कहते हो कि ये जादूगर है, तो जरा जादूगर की करतूतें और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार जरा आमने सामने रखे तो देखो, जादूगर तो झूठे होते हैं, कज़्ज़ाब होते, दुनियादार होते, दुनिया के तालिब होते, दुनिया के भिखारी होते हैं, और दिन रात गंदे मंदे मिलिया मेट, और सिर्फ दुनिया और लोगों में फसाद डालना, बर्बादियां डालना, उनका तो काम ही होता है। और इधर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है कि दुनिया की तलब का नामो निशान नहीं, उल्फत है, प्यार है, मोहब्बत है, शफकत है, हिल्म है, बुर्दबारी है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक करना है, लोगों में सुलह करवाना है, तो क्या जादूगर का किरदार ये होता है? अच्छा, तुम कहते हो काहिन, काहिन की एक बात थोड़ी सी सही निकलती है, 90 बातें उसकी झूठी निकलती इन, और ये और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनको तुम खुद कहते हो सादिको अमीन है, काहिन की हर दूसरी बल्कि हर बात ही झूठी और इनकी हर बात सच्ची, तो बताओ काहिन इनको कहा जा सकता है? फिर तुम कहते हो मजनून है, तो क्या कोई मजनून ऐसा शानदार कलाम, इतनी आला दर्जे की तालीमात, इतने पाकीजा किरदार का मालिक होता है? नहीं। तो जो बातें करते हो उन बातों में एक एक बात गलत है तुम्हारी, जो तुम कहते हो उनमें एक एक बात गलत है। और हकीकत क्या है? फरमाया हकीकत यह है कि अम हुम कौमुन तागून, बल्कि वो सरकश लोग हैं। ये है सरकशी, ये सिर्फ जिद है, इनाद है, एक पिछले पहले से जो आबाओ अजदाद की जो एक अंधी तकलीद दिलों में रची बसी है, जो बचपन से अकीदे दिलों में रासिख हो चुके हैं, खा वो बातिल ही हैं, खा वो मर्दूद ही हैं, खा वो गलत ही हैं, खा उनकी कोई अकली बुनियाद भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो चलते आ रहे हैं लिहाजा इस वजह से आगे से एक सरकशी का रवैया है और एक रद्द करने का रवैया है। वरना अगर इस नबी अलैहि सलातो वसलाम की जात को देखते हो तो तुम खुद गवाही दोगे, ना इनके अंदर कहानत है, ना शायरों वाली बातें हैं, ना इनके अंदर जादू वाली और जादूगरों की कोई सिफत पाई जाती है, और जुनून का तो नामो निशान तक भी नहीं। तो ये सारी चीजों से पाक खुदा के सच्चे नबी हैं जो असल खुदा की किताब को लेके आए हैं। अब खुदा की किताब के हवाले से तो फरमाए अम यकूलूना तकव्वला बल ला यूमिनून, فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، بلکہ وہ کفار کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ کافر سچے ہیں، تو اس قرآن جیسی ایک بات تو لے کر آئیں، ایک بات تو لے کے آئیں. یہ کفار کی ایک اور بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ خدا نے نازل کرتا، یہ خود ہی بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ کہہ ہی رہے ہو کہ یہ خود بنا لیتے ہیں، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم بھی ایک بات ایسی بنا کے لے آؤ، ایسی پر اثر ہو، ایسی فصیح و بلیغ ہو، ایسی جامع ہو، ایسی زندگی کو بدلنے والی ہو، اس طرح دلوں پہ اثر کرنے والی ہو، تو تم بھی لے کے آ جاؤ. لیکن نہیں، وہ کبھی نہیں لا سکیں گے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو کفار نے اعتراضات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے. اب اس کے بعد پھر اگلا موضوع شروع ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فہم قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.